पुरुषार्थ के अंतर्गत तीसरी हेडिंग है काम। पुरुषार्थ के अंतर्गत काम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यद्यपि काम को सांसारिक जीवन के आधार के रूप में तो स्वीकार किया गया, लेकिन इसे सबसे निम्न कोटि का पुरुषार्थ माना गया है। एक पुरुषार्थ के रूप में काम का अर्थ दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम अर्थ व्यापक है और दूसरा संकुचित। व्यापक अर्थों में काम का तात्पर्य उन सभी इच्छाओं से है जो इंद्रियों की संतुष्टि से संबंधित है और जो मनुष्य को भौतिक सुख की ओर प्रेरित करती है। संकुचित अर्थों में काम का तात्पर्य केवल यौनिक संतुष्टि अथवा यौनिक इच्छा से है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की सभी इंद्रियों का मूल उसका मन है। इस प्रकार व्यक्ति का मन ही उसे शारीरिक, मानसिक अथवा कलात्मक सुख की ओर प्रेरित करता रहता है। इस सुख की संतुष्टि करना ही काम का वास्तविक आधार है। इस प्रकार के काम के अंतर्गत वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक आधार पर इच्छा, प्रेरक, उद्दीपन, चालक अथवा आवश्यकताएं कहते हैं। काम को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार क्यों किया गया है, इसे तीन आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। यह आधार क्रमशः जैविकीय, सामाजिक और धार्मिक है। पहला, जैविकीय आधार पर यह स्वीकार किया गया है कि अपनी विभिन्न इच्छाओं के कारण व्यक्ति में धीरे धीरे तनाव बढ़ता है और इस तनाव को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक किसी जैविकीय क्रिया के द्वारा ही इसकी संतुष्टि न कर दी जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति न होने से मनुष्य में निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है, जिसका सर्वोत्तम साधन यह है कि कुछ नियमों के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट कर दिया जाए। दूसरा, सामाजिक आधार पर काम निश्चय ही प्रत्येक प्राणी की एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक और प्रजनन के द्वारा समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए काम की पूर्ति होना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर परिवार में पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी काम को एक कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसी आधार पर गृहस्थ आश्रम में काम की संस्थात्मक रूप से छूट देकर विवाह को अनिवार्य संस्था माना गया। तीसरा, धार्मिक आधार पर काम को उसी सीमा तक मान्यता दी गई है जहाँ तक यह व्यक्ति की अति आवश्यक इच्छाओं और इंद्रिय लोलुपता को शांत करने में सहायक है, क्योंकि इंद्रियों का प्रभाव काम से होने के पश्चात ही व्यक्ति आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। इस आधार पर काम एक साधन मात्र है जिसकी सहायता से मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि विषय सुख से तब तक विरक्ति नहीं होती जब तक इसका प्रत्यक्ष अनुभव न कर लिया जाए। इस आधार पर व्यक्ति को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए तैयार करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक समझा गया होता है कि गृहस्थ आश्रम में ही वह काम की संतुष्टि करके आगामी जीवन में इसके प्रति विरक्त हो सके। इसी आधार पर मनु ने धर्म, अर्थ और काम के समन्वय पर बल दिया है। जो व्यक्ति विषय सुख के रूप में काम के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वे वास्तव में इस पुरुषार्थ को गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। चार्वाक के सुखवादी दर्शन को काम का आधार किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। काम का वास्तविक रूप केवल तीन ही है। पहला रूप दाम्पत्य बंधन के रूप में, जिसकी अभिव्यक्ति गृहस्थ आश्रम के द्वारा होती है। दूसरा आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं, जिसकी अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप कृष्ण लीलाओं के दर्शन में मिलता है। और तीसरा रूप कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष से संबंध है, जिसका उदाहरण अजंता व खजुराहो की मूर्तियों में देखा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ के रूप में काम का स्थान मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। यद्यपि काम एक दोष है, लेकिन इसे अनिवार्य दोष की श्रेणी में रखना ही उचित है। यही कारण है कि धार्मिक नियमों के द्वारा काम पर अंकुश रखकर इसे एक उपयोगी पुरुषार्थ का रूप देने का प्रयत्न किया गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत चौथी हेडिंग है मोक्ष। यद्यपि मोक्ष सभी पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वह स्वयं भी इस दृष्टिकोण से एक पुरुषार्थ है कि इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना अथवा परिश्रम करना पड़ता है। यह एक शाश्वत नियम है कि सांसारिक सुख स्वयं में कभी पूर्ण नहीं होते। इस प्रकार अर्थ और काम जीवन के लिए आवश्यक होने पर भी मनुष्य को अस्थायी सुख नहीं प्रदान करते। अस्थायी सुख केवल तभी संभव है जब मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छूटकर ब्रह्मा में लीन हो जाए अथवा वह पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करने लगे। इसी स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं और यही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष की अवधारणा को समझने के लिए इससे संबंधित तीन महत्वपूर्ण पक्षों को समझना आवश्यक है। मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष किस प्रकार व्यक्तियों को प्राप्त होती है तथा मोक्ष को प्राप्त करने का तरीका क्या है। निम्नांकित विवेचन से इन तीनों पक्षों को स्पष्ट करके हम मोक्ष की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। हेडिंग, मोक्ष का अर्थ। सांख्य शास्त्र, गीता, अद्वैतवादियों तथा मोक्ष का द्वारा मोक्ष का भिन्न भिन्न रूप में स्पष्ट किया गया है। यद्यपि सभी के अनुसार मोक्ष का मुख्य संबंध आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। सांख्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है, उसकी बुद्धि और मन भी प्रकृति के द्वारा ही कार्य करते हैं। व्यक्ति जब सात्विक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उस पर पड़ा हुआ माया का आवरण हट जाता है और व्यक्ति स्वयं को माया से भिन्न अनुभव करने लगता है। इस स्थिति में प्रकृति अथवा माया व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती और इस प्रकार व्यक्ति कैवल्यता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कैवल्यता का तात्पर्य समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से छुटकारा है। यह मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। इस व्याख्या का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मनुष्य को निष्क्रिय मान लिया गया है, जो अधिक उचित नहीं है। शिव गीता में मोक्ष को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई एक वस्तु नहीं है और न ही इसे गांव में घूम घूम कर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तव में जब हृदय की अज्ञानता ग्रंथ का नाश हो जाता है, अर्थात व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब इसी स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। गीता में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो गई, अर्थात जिन्होंने यह जान लिया कि सभी स्थानों में एक ही परमेश्वर है, तथा जो व्यक्ति आत्मसंयम के द्वारा सभी प्राणियों के हित की साधना करते हैं, उनको प्राप्त होने वाले निर्वाण का नाम ही मोक्ष है। अद्वैतवादियों के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त कर लेना है। मोक्ष का लक्ष्य व्यक्ति के तदैव समीप रहता है, लेकिन मृग तृष्णा के समान इसे खोजने के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर पाता। व्यक्ति जब स्वयं को समझ लेता है तब अज्ञानता का आवरण हट जाने से वह शीघ्र ही ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। यही स्थिति वास्तव में मोक्ष की स्थिति है। इस संबंध में दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष किन व्यक्तियों को प्राप्त होती है तथा मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार के साधनों का उल्लेख मिलता है। एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा भक्ति का मार्ग। व्यक्ति जब सभी प्राणियों में समानता का भाव रखता हुआ अपने मन को स्थिर कर लेता है अथवा आत्मज्ञान कर लेता है, तब मोक्ष को के इसी मार्ग को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी स्थिति प्रज्ञ है, अथवा जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है, जिसके लिए सुख दुख लाभ हानि सब बराबर हैं, उसी आत्मज्ञानी को मोक्ष प्राप्त होती है। मनुस्मृति में भी ज्ञान मार्ग को महत्व देते हुए यह बताया गया है कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति को केवल इसी जीवन में सुख मिल सकता है, लेकिन वह परम सुख जिसके अंतर्गत व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार एक अत्यंत निर्गुण ब्रह्मा की उपासना द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष का आधार है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। एक अव्यक्त ईश्वर में मन को स्थिर रखना निश्चय ही कठिन कार्य है। इसलिए सामान्य प्राणियों के लिए सरल उपाय भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। इस प्रकार भक्ति मार्ग वह है जिसमें ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करता हुआ मनुष्य उसके प्रति अपने को पूर्णतया समर्पित कर देता है। भक्ति मार्ग के अंतर्गत ईश्वर को ही माता, पिता, स्वामी, सखा और साक्षी इत्यादि सभी कुछ मानकर व्यक्ति स्वयं को उस ईश्वर का केवल एक निमित्त मानता है। इस प्रकार व्यक्ति जब स्वधर्म का पालन करता हुआ अपना सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है, तब उसे स्वतः ही मोक्ष प्राप्त हो जाती है। गीता में इन दोनों मार्गों का समन्वय करते हुए कहा गया है कि यद्यपि अभ्यास के द्वारा भी मुझे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे अच्छा यह है कि मन की सभी इच्छाओं का त्याग और कर्म फल की इच्छा न करते हुए व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले। यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति को सुख दुख ऊंच नीच जन्म मृत्यु जवानी बुढ़ापा सब समान प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सारे ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को समाप्त कर देती है। इस प्रकार स्वधर्म का पालन करने हेतु भी व्यक्ति जब कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ देता है, तभी ज्ञान के प्रकाश में वह मोक्ष प्राप्त करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मोक्ष का तात्पर्य किसी दूसरे लोक अथवा स्वर्ग को प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधनों से छूटकर आत्मा के स्वरूप तथा स्वयं को पहचान लेना है। इस स्थिति में व्यक्ति को पुनर्जन्म की आशंका प्रभावित नहीं करती। यही जीवन चक्र से मिलने वाली मुक्ति है। हिंदू जीवन दर्शन में मोक्ष ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर सभी व्यवस्थाएं स्थित हैं और सभी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना है। पुरुषार्थ के अंतर्गत अगली हेडिंग है पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व। भारतीय जीवन पद्धति में यद्यपि चारों ओर पुरुषार्थ का अर्थ और महत्व एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन ये सभी पुरुषार्थ अपने अपने क्षेत्र में व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हुए परस्पर संबंधित हैं। सामान्य रूप से चारों पुरुषार्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ओर धर्म और मोक्ष परलौकिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जबकि अर्थ और काम इसी संसार में मनुष्य की सुख सुविधाओं से संबंधित हैं। इस प्रकार मूल रूप से चारों पुरुषार्थ भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के बीच एक आदर्श संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। निम्नांकित विवेचन से हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन चारों पुरुषार्थों के तुलनात्मक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। हेडिंग धर्म। साधारण रूप से धर्म व्यक्ति को एक सिद्धांत मात्र प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सांसारिक जीवन की अपेक्षा परलौकिक जीवन इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसी के संदर्भ में व्यक्ति मानवीय गुणों की ओर प्रेरित होता है। धर्म एक मर्यादा है जो अर्थ और काम पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति को पथभ्रष्ट होने से रोकती है और उसे उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराती है। इस मर्यादा की अवहेलना करके किसी भी पुरुषार्थ को वास्तविक रूप से उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अन्य सभी पुरुषार्थ व्यक्ति के तत्कालीन जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण है, जबकि धर्म ही एकमात्र ऐसा पुरुषार्थ है जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का साथ देता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यदि अर्थ और काम को धर्म से पृथक कर दिया जाए तो ये आसुरी शक्ति का रूप ले सकते हैं, जिसके फलस्वरूप मोक्ष का लक्ष्य किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्म एक आधारभूत पुरुषार्थ है जो प्रत्येक दूसरे पुरुषार्थ का मार्ग निर्देशन करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मानसिक संघर्षों से रक्षा करने में उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने तथा उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों का समाजीकरण करने के क्षेत्र में इस पुरुषार्थ का महत्व सबसे अधिक है। यदि तनिक ध्यान से देखा जाए तो अस्पष्ट होता है कि कुछ अर्थों में तो धर्म का महत्व मोक्ष से भी अधिक है। इसका कारण यह है कि मोक्ष एक कल्पना हो सकती है, जबकि धर्म एक व्यवहारिक सत्य है। मोक्ष के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग आवश्यक है, जबकि धर्म प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने पर बल देता है। मोक्ष केवल व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, जबकि धर्म सभी के कल्याण का सुंदर आदर्श प्रस्तुत करता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि चारों पुरुषार्थों में सामाजिक दृष्टि से ही धर्म ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हेडिंग अर्थ। पुरुषार्थ में अर्थ का स्थान यद्यपि दूसरा है, लेकिन इस पुरुषार्थ को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। अर्थ का महत्व अनेक आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका सर्वोपरि महत्व इस तथ्य में निहित है कि अर्थ के बिना स्वधर्म का निर्वाह किसी भी प्रकार संभव नहीं है। व्यक्ति को यज्ञों की पूर्ति करने तथा धार्मिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए आर्थिक साधन प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। कौटिल्य ने अर्थ को इस आधार पर महत्वपूर्ण माना है कि दान और गृहस्थ आश्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थ पर ही निर्भर है। गोखले का कथन है कि निर्धनता एक अभिशाप है और इसे मृत्यु से भी बुरा कहा गया है। बिना धन के सद्गुण भी बेकार हो जाते हैं। भिक्षुक का जीवन जीवित ही नरक में रहने के समान है। हमारे सामाजिक व्यवस्थाकार इस बारे में भी जागरूक रहे हैं कि आर्थिक विकास के बिना न तो सामाजिक व्यवस्था स्थिर रह सकती है और न ही समाज शक्तिशाली बन सकता है। इसके उपरांत भी अर्थ को केवल एक सहयोगी पुरुषार्थ के रूप में ही लिया जा सकता है। यह पुरुषार्थ आंशिक महत्व है जिसे धर्म के द्वारा पूर्णता प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण से अर्थ की अपेक्षा धर्म ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली हेडिंग है काम। पुरुषार्थों के अंतर्गत काम का महत्व भी कम नहीं है। यदि हम संकुचित दृष्टिकोण से तत्कालीन जीवन में काम के महत्व पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि परिवार में स्नेह संबंधों की वृद्धि तथा समाज की निरंतरता के लिए यह पुरुषार्थ आधारभूत है। रति के बिना न तो प्रेम संभव है न ही संतानोपत्ति। इस प्रकार काम के बिना वंश परंपरा तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के हस्तांतरण का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो काम और भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। इसका कारण यह है कि काम के द्वारा इंद्रियों की संतुष्टि होने से ही विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है और यही विरक्त मोक्ष का प्रमुख साधन बन जाती है। इस प्रकार काम वह पुरुषार्थ है जो भोग में भी त्याग को संभव बनाता है। यह सच है कि भारतीय जीवन में काम को धर्म के द्वारा नियंत्रित करने के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है और काम को सबसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से यह पुरुषार्थ इतना व्यापक है कि इसमें धर्म तथा अर्थ भी समा जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि काम के बिना न तो पितृ ऋण से उऋण हुआ जा सकता है और न ही पितृव्यों के लिए पिंडदान की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरी ओर यदि काम न हो तो तब व्यक्ति के जीवन में इतनी निष्क्रियता आ जाएगी कि वह अपने आर्थिक दायित्वों का भी निर्वहन नहीं कर सकेगा। इस दृष्टिकोण से काम एक प्रेरणा है जो धर्म तथा अर्थ की पूर्ति के लिए उचित वातावरण तैयार करती है। इसके उपरांत भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पुरुषार्थ के अंतर्गत काम सबसे निम्न कोटि का पुरुषार्थ है और धर्म से अलग कर दिए जाने पर यह पुरुषार्थ नहीं बल्कि वासना अथवा व्यभिचार मात्र रह जाता है। अगली हेडिंग है मोक्ष। जो व्यक्ति मोक्ष को जीवन का केवल एक आदर्शात्मक पक्ष कहकर छोड़ देते हैं वे संभवतः इस पुरुषार्थ के वास्तविक रूप से परिचित नहीं होते। हिंदू जीवन में मोक्ष ऐसा पुरुषार्थ अथवा अंतिम लक्ष्य है जिसके कारण है धर्म अर्थ और काम संतुलित रूप से मानव व्यवहार के अंग बन पाते हैं। मोक्ष का लक्ष्य इस परम सत्य का उद्घाटन करना है कि केवल अर्थ और काम के द्वारा ही वास्तविक शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। आर्थिक क्रियाएं और इंद्रियों की संतुष्टि व्यक्ति को सुख देने के साथ ही उसके दुखों का भी कारण बनती है। व्यक्तिगत निराशा और सांसारिक दुखों से बचने का एकमात्र उपाय ज्ञान के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाना है। मोक्ष की धारणा का इससे अधिक व्यवहारिक रूप और क्या हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म और काम की पूर्ति को समान रूप से अनावश्यक मान लिया गया है। इस प्रकार मोक्ष सांसारिक और परलौकिक जीवन का एक समन्वय है। मोक्ष की इसी धारणा ने भारतीय समाज को बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी सुरक्षित रहकर व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास करने तथा जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट करने में भी इस पुरुषार्थ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी पुरुषार्थों के सापेक्षिक महत्व को समझने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त चारों पुरुषार्थ परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी पुरुषार्थ को दूसरे की अपेक्षा कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यद्यपि धर्म का महत्व जीवन के सभी स्तरों और सभी परिस्थितियों में है लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अर्थ और काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी आधार पर मनुस्मृति में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ काम और अर्थ को, जबकि कुछ व्यक्ति केवल धर्म अथवा अर्थ को ही श्रेष्ठ समझते हैं। परंतु वास्तव में तीनों ही पुरुषार्थ धर्म अर्थ तथा काम समान रूप से श्रेष्ठ हैं। श्री प्रभु ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक जीवन का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है। पुरुषार्थ एक मनोवैज्ञानिक आधार इसलिए है कि इसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक संतुष्टि प्राप्त करके जीवन के उच्चतर आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और यह एक नैतिक आधार दृष्टिकोण से है कि विभिन्न पुरुषार्थों के फलस्वरूप ही समाज में मानवीय गुणों और त्यागमय जीवन का विकास किया जा सकता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत नियंत्रित स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देकर समाज को व्यवस्थित बनाने में सहायक हुआ है। व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता अवश्य दी गई है लेकिन इस स्वतंत्रता को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की धारणा से इस प्रकार जोड़ दिया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का मनमाने रूप से उपयोग न कर सके। संसार में ऐसी कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं है जिसने सांसारिक और पौरलौकिक जीवन के बीच इतना सुंदर तथा व्यवहारिक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया हो। विभिन्न पुरुषार्थों ने न केवल इस समन्वय को संभव बनाया है बल्कि व्यक्ति और समाज के पारस्परिक दायित्वों का निर्धारण भी इस प्रकार किया गया है जिससे दोनों एक दूसरे के विकास में अपना योगदान करते रहें। यही पुरुषार्थ का वास्तविक समाजशास्त्रीय महत्व है। इसके उपरांत भी पुरुषार्थ की व्यवस्था का सही मूल्यांकन करने तथा इसकी वास्तविकता को समझने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि धर्म सभी पुरुषार्थों का मूल आधार है, अर्थ तथा काम वे प्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों की ओर प्रेरित करते हैं और मोक्ष वह अंतिम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न पुरुषार्थों में समन्वय बने रहना आवश्यक है। इस प्रकार आपका तीसरा अध्याय पुरुषार्थ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।